ये रेडियो नेपाल है और रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सोने की तस्करी की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग को लेकर नेकपा एमाले ने की प्रतिनिधि सभा की बैठक को बाधित। आगामी मार्गशीर्ष 11 से 13 गति तक काठमांडू में महासमिति बैठक करने का नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति बैठक का निर्णय। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड का कथन। और चावल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत से किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध के कारण प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक एजेंडा में शामिल हुए बिना ही स्थगित कर दी गई है। एमाले के सांसदों द्वारा त्रिवन विमानस्थल से सोने की तस्करी की सच्चाई की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने और गृहमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग करते हुए नारे लगाने के बाद बैठक को एजेंडे में शामिल किए बिना ही स्थगित कर दिया गया। इससे पहले बैठक की शुरूआत में सांसदों ने समय निकालकर सोने की तस्करी समेत विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक श्रावण 15 गति सोमवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 100 किलो सोना जब्त किए जाने के संबंध में प्रतिनिधि सभा में तत्काल सार्वजनिक महत्व का एक प्रस्ताव दर्ज किया गया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक से पहले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने सोने तस्करी कांड के विषय में संसद में विचार विमर्श करने और सरकार से जवाब मांग करते हुए जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव को दर्ज किया। अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के प्रस्तावों पर 20 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। नेकपा एमाले संसदीय दल की बैठक ने सोने की तस्करी मामले के विषय में सरकार से जवाब मांगने का निर्णय किया है। नया बानेश्वर स्थित संसद भवन में आज हुई संसदीय दल की बैठक में सोने की तस्करी मामले में गहन जांच पड़ताल करने का निर्णय किया है। ये जानकारी एमाले के नेता रघुजी पंत ने दी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड़गा ने बाढ़ भूस्खलन लगायत के कारण जनधन की क्षति न होने देने तथा अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल संचालन करने की व्यवस्था मिलाने का निर्देश किया। आज रक्षा मंत्रालय में आपदा व्यवस्थापन लगायत के विषय में हुई बैठक में उन्होंने आपदा पूर्व सतर्कता को उच्च प्राथमिकता के तौर पर काम करने के निर्देश दिये। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक ने आगामी मार्गशीर्ष में पार्टी की महासमिति बैठक करने का निर्णय किया है। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के एक हफ्ते तक हुई बैठक में पार्टी की महासमिति की बैठक मार्गशीर्ष के 11, 12 और 13 गते काठमांडू में करने का निर्णय किया है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आज हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा ने ये बात कही। इसी तरह नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में सरकार से मध्येश प्रदेश में बारिश की कमी के कारण मध्येश को सूखा क्षेत्र घोषित करने और किसानों को राहत देने की मांग की गई। इसी तरह कांग्रेस बैठक ने भ्रष्टाचार नियंत्रण और सुशासन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम का समर्थन करने की बात पर भी जोर दिया गया। कांग्रेस ने इसी श्रावण 20 गति से पार्टी को क्रियाशील बनाने, गांव जिला से केंद्र तक विभिन्न अभियानों समेत संचालन करने का भी निर्णय किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। ललिता निवास की जमीन हेराफेरी मामले में गिरफ्तार 22 लोगों से अनुसंधान करने के लिए पुलिस को 5 और दिनों का समय दिया गया है। सीआईबी के वरिष्ठ पुलिस उपरीक्षक दिनेश आचार्य ने बताया कि उन्हें आज जिला अदालत काठमांडू में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें जांच के लिए 5 और दिनों का समय दिया है। सीआईबी अब उनसे बयान लेना जारी रख रही है। सरकारी जमीन के गबन के आरोप में पूर्व चुनाव आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केट के मालिक मीन बहादुर गुरुंग, पूर्व कर्मचारी धर्म प्रसाद गौतम और गोपाल कार की लगात 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ललिता निवास मामले में ब्यूरो ने पहले 300 लोगों को प्रतिवादी बनाकर जिला वकील कार्यालय में रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन सरकारी वकील के कार्यालय ने आगे की जांच की जरूरत बताकर फाइल वापस भेजी थी, जिसके बाद ब्यूरो ने फिर से जांच शुरू की है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास निर्माण और समृद्धि के पक्ष में नया अभियान संचालन करने की तैयारी कर रही है। गैर आवासीय नेपाली संघ इटली द्वारा प्रधानमंत्री के सम्मान में आज इटली के रोम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सभा के सांसदों ने सिंहदरबार स्थित पुराने संसद भवन को जल्द से जल्द पुरानी शैली में बनाने की बात पर जोर दिया है। राष्ट्रीय सभा की प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के संसद सचिवालय सिंहदरबार में आज हुई बैठक में सांसदों ने सुझाव दिया कि 100 साल का इतिहास रखने वाली गैलरी मीटिंग का पुनर्निर्माण कर इसे एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व की बौद्धी काली गांव पालिका वार्ड नंबर 6 में जंगली मशरूम खाने से 2 लोगों की मौत हो गई है। जिला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी से मिली जानकारी के मुताबिक बौद्धी काली वार्ड नंबर 6 माझ डाड़ा के 99 वर्षीय लीला आले और 66 वर्षीय उमा कुमारी आले की जंगली मशरूम खाने से मौत हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत सरकार से गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि घरेलू प्रभाव में आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति को सुगम बनाने तथा खुदरा मूल्य को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2023 को गैर बासमती संवर्ग के सफेद कच्चे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत से चावल के कुल निर्यात में सफेद चावल की भागीदारी 25% से ज्यादा रहती है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा था कि गैर बासमती सेला चावल तथा बासमती चावल की निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं होगा और इसका शिपमेंट पहले की तरह जारी रहेगा। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा है कि इस तरह के प्रतिबंध से वैश्विक बाजार में खाद्य उत्पादों की कीमतों में जोरदार अस्थिरता आने की संभावना रहती है। इसके फलस्वरूप आईएमएफ इस तरह के निर्यात प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह करेगा, क्योंकि ये वैश्विक खाद्य बाजार के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आईएमएफ को लगता है कि भारत में सीमेंट बंद होने के बाद वैश्विक बाजार में सफेद चावल का भाव तेजी से उछल सकता है, जिससे खासकर गरीब देशों का संकट बढ़ जाएगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सोने की तस्करी की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग को लेकर नेकपा एमाले ने की प्रतिनिधि सभा की बैठक को बाधित। आगामी मार्गशीर्ष 11 से 13 गते तक काठमांडू में महासमिति बैठक करने का नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति बैठक का निर्णय। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का कथन और चावल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत से किया आग्रह। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।